Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.
Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद निशित. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ कुमार बिजॉय. कुमार जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
और अब हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार.
द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद गेन्स ऑफ ओवर हाफ अ परसेंट. सेंसेक्स राइजेस ओवर 530 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस अबव द 22,950 लेवल. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर. Calls upon investors and industrialists to support MSMEs, startups by youth, research and innovation activities in Odisha. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $77.66 per barrel.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त में रहे. सेंसेक्स 530 अंकों से अधिक बढ़ गया. निफ्टी 22,950 के स्तर से ऊपर हुआ बंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया. निवेशकों और उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वे ओडिशा में मध्यम छोटे और सूक्ष्म उद्योगों, युवाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स और अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों को अपना समर्थन दें. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़त. ब्रेंट क्रूड $77.66. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त पर बंद हुए. बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ावा देने के उपायों की आरबीआई द्वारा की गई घोषणा के बाद बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की अगुवाई में बाजार में ये तेजी आई. बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.71% की बढ़त से 535 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 75,901 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.56% की तेजी से 128 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 22,957 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से कमजोर रहा और दोनों सूचकांक गिरावट पर बंद हुए. अब मिड कैप सूचकांक 0.6% से अधिक गिर गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.7% से अधिक गिरावट दर्ज हुई.
The benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 0.5%, led by banking and financial services sectors, following RBI's announcement of measures to boost liquidity in the banking system. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex rose 535 points, or 0.71%, to close at 75,901. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 gained 128 points, or 0.56%, to settle at 22,957. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange underperformed the equity markets. The mid-cap index dropped over 0.6% and the small-cap index slumped over 1.7%. In the Sensex index, 18 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Bajaj Finance surged over 4.3%, Axis Bank soared over 3.8%, and Bajaj Financial Services gained over 3.2%. Meanwhile, in the top laggards, Sun Pharma plummeted over 4.4%, Larsen and Tubro shed over 1.3%, and NTPC dropped 1.27%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 out of 21 sectors ended in the negative territory. In the top laggards, healthcare slipped over 1.9%, industrials slipped 1.6%, and capital goods dropped over 1.5%. Conversely, among the top gainers, BankEx gained almost 1%. 1.5%, financial services added 1.45%, and realty increased over 1.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,666 companies declined and 1,308 advanced, while 110 remained unchanged. At the National Stock Exchange, six companies hit their 52-week high, while 538 hit their 52-week low.
और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर होकर 86.53 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.91 पर था. कुमार जी, आज हमने देखा है कि बाजार में अच्छी खासी तेजी आई है 500 अंकों से अधिक की, और जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, स्पेशली बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या रियल्टी सेक्टर, इनमें हमने लगभग 1.5% की तेजी देखी है. सो कैसे देखते हैं आप आरबीआई की इस अनाउंसमेंट को, और क्या एंटिसिपेशन बनती है अगले वीक आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स पर, क्या डिसीजन की एंटिसिपेशन बनती है?
पहले तो ये जो मार्केट का लेवल है, ये इतना नीचे आ चुका था जहां पे इसको थोड़ा सा अपवर्ड तो जरूरत थी ही मूवमेंट की, क्योंकि मार्केट को अगर लॉन्ग टाइम हाई से देखेंगे तो मार्केट 76,000 से नीचे आ चुका था अगर सेंसेक्स की बात करें. जो आरबीआई का जो मॉनेटरी इंटरवेंशन है, जैसे 60,000 करोड़ के गिल्ट जो है उसको बाय बैक करना है, उनको खरीदना है तीन ट्रेंच में 20,000 करके, तो एक्चुअली ये लिक्विडिटी को इंक्रीज कर रहा है. लिक्विडिटी अगर मार्केट में इंक्रीज होती है तो मार्केट में फिर परचेजिंग पावर बढ़ता है, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है मार्केट में, क्योंकि जो होल्डिंग्स हैं बैंक के उनके पास फंड आ जाता है. जो आपके ये देख भी रहे हैं कि बैंक ने और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ने बेटर परफॉर्म किया. सेकेंड, इवन डॉलर रुपीस फ्रंट पे भी आरबीआई ने इंटरवेन किया है ओपन मार्केट के थ्रू. तो ये जो आरबीआई का इंटरवेंशन है, ये इंटरवेंशन अपने आप में एक कह सकते हैं कि मार्केट के लिए बूस्टर है, ये एक फैक्टर. तो एक स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज नहीं जो कि मार्केट को नीचे ले जाए. सेकेंडली, जो मार्केट में मॉनेटरी इंटरवेंशन जो सेंट्रल बैंक का है, वो ये दोनों चीजें मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, बल्कि मैं कहूंगा कि मार्केट को एक स्ट्रेंथ दे रहा है. एक और पॉइंट यहां पे है, जैसे आपने कहा कि आने बजट वाला, तो अब यही वीक कह सकते हैं कि बजट है. अभी दो दिन में, तीन दिन में इकोनॉमिक सर्वे आएगा और उसके बाद बजट प्रेजेंट होगा. और इस बार का बजट ये माना जा रहा है और होना भी चाहिए कि अब एक ये गियर शिफ्ट होना चाहिए. इट इज अ गियर शिफ्टिंग बजट बिकॉज गवर्नमेंट का भी तीसरा टर्म है और कंट्री भी फंडामेंटली अब उस पोजिशन पे है जहां नए और कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जो इकोनॉमी को एक नए और वाइटल जंप के लिए रेडी करेगा. जब तक ये संभव नहीं होगा तब तक वो जो टारगेट रखा जा रहा है 2047 का, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए इसको गियर अप होने की जरूरत है, जिसमें फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें, थोड़ा सा कैपेक्स की के इंक्रीमेंट की बात करें, बजट में कैपेक्स को फोकस करने की जरूरत है. तो ये सब बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो उस ध्यान से देखने की जरूरत होगी कि इस बजट में क्या उम्मीद करें. बहुत कुछ नए तरीके से सोचने की जरूरत है. इवन डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा इंक्रीज हो, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप जो है अभी तक टैक्स के फ्रंट पे बहुत बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है उनको, उस फ्रंट पे भी गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है.
परचेजिंग पावर की बात
जो पिछली बार भी हम लोगों ने परचेजिंग पावर की बात की थी, वो जरूरी है. तो ये वो पॉइंट है जहां कुछ बहुत ही दूरगामी, जिसको कहते हैं कि दूरदृष्टि रखते हुए कदम उठाने की जरूरत है.
विजय जी, टॉकिंग ऑफ द मार्केट्स इन द रीसेंट टाइम, लेट्स टॉक ऑफ द लास्ट 10, 15 और 20 सेशंस नाउ. वी हैव सीन डीपर एंड मोर डीपर कट्स हैपनिंग. नाउ वी हर्ड अबाउट द डीप सीक ऐप, द चाइनीज ऐप, विच हैज काइंड ऑफ प्लेड, if you can say, havoc on the markets all over. Like yesterday in the last session we saw the cuts, with the red cuts that we saw in the Indian markets. So you just mentioned in your opening remarks that of course there was some bottoming out in the Indian market, so there was this kind of the need for a push, the upward push that we saw today in the market. So do you really see that the Indian market has bottomed out, or Is there more deeper cuts in the offing in the coming times?
See, if you look upon the last not only few sessions, I'll talk about around 3-4 months session.
Yeah, that's right.
September onward, if you talk about, you'll find out that it's a more global reasoning rather than the domestic reasoning has been there. So global reasoning will be affecting the market undoubtedly. Every economy is trying to have their better performance. So is China, had to have that whatever the lost ground is there in the global participation, they want to have it again. And China, don't forget that China is a really big economy. If you exclude USA and Asia's largest economy, having around 20 trillion of GDP size, so something five times bigger than India's size. And if they are turning, certainly it will have the impact. And initially, a stimulus was there. Now, this is a new AI product which is going to be cheaper, faster, better, even including any other player. But these things keep on happening. We should not be worried about it because news in global environment will keep on coming. Not from one corner, from other corner also. And India has to really be ready for that kind of shocks.
But one thing which I would like to mention it is that mostly in the past, even in the recent years, we have seen that the times or the week just before the budget presentation has really kind of buoyed up the markets. Kind of there has been certain kind of an enthusiasm. But that is lacking this time. Is it mostly because of the global wave that we are seeing? Or is it because the markets are not seeing something very kind of promising coming up in the budget?
We can really look into two different ways. First one is that there might be possible much bigger, jerks would have been felt and market should have been more down had it not been a domestic support. So this is what we can comparatively look upon. The way other market, even just you talk about DeepSeek and the recent activity itself, other Asian market you compare, they have been really down to a greater extent. Why it is, and even IT sectors, it has been affected like anything. So what I am perceiving that whatever the, whether it was initially through a stimulus or right now through this new announcement related to AI product, whatever the quantum of impact has been there, comparatively jerk is lesser to Indian market because of domestic strength and because of confidence level which is there with the present policymaker. Because they feel it that our policymaker is always going to have one or other policy which will be giving the strength to Indian economy. And certainly we are looking into a long investment.
In fact, Bijoy ji, jo ye deep seek ki bhi jo baat ho rahi hai, wo hamare liye beneficial hi hai. Agar cheaper AI options aati hai, so for India, maybe it's a bigger shock for US. But for India, to ek beneficial hi development hogi on the long run.
Thodi der ke liye ye socha ja raha hai ki actually is field mein India bhi apne aap ko ajma raha hai as a manufacturer. To jab aap apne aap ko manufacturer और इंडियन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उधर मेक इन चाइना आपसे एक बेटर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट दे रहा है, लोअर प्राइस पे दे रहा है, तो वहां पे थोड़ा कंपटीशन है. वो एक फीलिंग होती है कि फिर आपका एआई मार्केट में कौन खरीदने वाला है. इवन हो सकता है कि आपका डोमेस्टिक
में काफी कंडीशंस रहती हैं चाइना के जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं
लेकिन होता क्या कि प्राइस एक इतना बड़ा फैक्टर है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ग्रेड. प्राइस जो है ना, प्राइस सेंसिटिविटी हर लेवल पे है, चाहे वो रिटेलर लेवल पे हो, कंज्यूमर लेवल पे हो, या इवन प्रोड्यूसर लेवल पे हो. प्राइस ऑफ इनपुट तो फैक्टर करता ही है.
तो आपने प्राइस की बात करी, आपने कहा कि वैल्यूएशंस मार्केट की अभी अट्रैक्टिव हैं, बिकॉज पहले आप एक प्रोग्राम में आपने कहा था कि जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. सो अब आपको लगता है कि रीजनेबल लेवल्स हैं और आगे शायद हम कुछ स्टेबिलिटी की आशा कर सकते हैं बाजार में.
बिल्कुल कर सकते हैं, आगे स्टेबिलिटी की आशा कर सकते हैं. एक फैक्टर और भी अभी मॉनिटर करने की जरूरत है. कुछ के परफॉर्मेंस रिजल्ट आ चुके हैं और अभी ये रिजल्ट सीजन है. तो वो रिजल्ट भी देखने की जरूरत है कि सेक्टोरल रिजल्ट कैसा है. मैं कंपनी स्पेसिफिक नहीं बात करता, लेकिन अगर सेक्टोरल रिजल्ट अगर ठीक है और खास करके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले जो सेक्टर हैं, अगर उनका रिजल्ट ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रेंथ मेंटेन्ड.
बट वन एरिया बिजॉय इज ऑफ कंसर्न रियली इज, यू टॉक्ड अबाउट द स्टेबिलिटी happening in some time now, and the domestic investors and the domestic players kind of making the platform more stable. But let's not undermine the importance of the FIIs. The FIIs have been in a flight mode for quite some time now, and it doesn't seem any possibility in the coming times that they would be coming back sooner in the Indian markets. So what do you have to say about that?
A good quantum of FIIs in the last 3 months has already been, moved out. Mm. So what I feel...
And it continues to move out.
Oh, yeah, that's true. That's true. That is what it's there. And that's why I said those are stimulus factors, and these are the various factors which is, coming from different corners, and that kind of things will keep on happening. Mm. But interesting part is there are domestic institutions are now penetrating to the market in a better way. Long past, you'll find out there had been a concept called December effect or January effect. Mm. Now those things are more or less over.
They're obsolete now, yes.
Yeah, the reason is that slowly our Indian players are also making it. Second, don't forget that now post-COVID our young investors, the very new generation, the millennial investor has been active in the market. Mm. And I am sure our strength is getting inherent. And I'm at least personally feeling not that much afraid the way we used to be earlier. Mm. And giving the higher coefficient value to this FIIs, I'm reducing the coefficient value to them.
And briefly, कहा जा रहा है कि बाजारों के ऊपर काफी अभी headwinds हैं, काफी concerns हैं, उस सबको देखते हुए आपको लगता है कि आज जो US Fed की policy meeting शुरू हुई है, अगले सप्ताह Friday को RBI की policy announcement आएगी, monetary policy, कुछ rate cuts की आशा कर रहे हैं आप दोनों से?
थोड़ा उम्मीद कम लग रहा है मुझे. ज्यादा उम्मीद नहीं है. दो कारण है, इन्फ्लेशन फ्रंट का भी कारण है और दूसरी बात है कि जहां तक आरबीआई की बात अगर आप करेंगे तो जो वो बेहतर ये होगा कि जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होने जा रहा है 1 फेब को, उसके थ्रू कैसे वो अलाइन करें और उसको कैसे सपोर्ट करें, उसको कैसे फैसिलिटेट करें, ये आरबीआई को ज्यादा आप सोचने की जरूरत है. अगर 25 बेसिस पॉइंट अगर कट हो जाता है तो इट विल बी ए वेलकम स्टेप. अगर नहीं भी होता है तो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी इकोनॉमी उसको मेंटली रेडी है उसको फेस करने के लिए.
आइए अब लेते हैं अगली खबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ओडिशा जल्द ही औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण प्रतीक बन जाएगा. आज सुबह भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत देश में विकास का इंजन है और ओडिशा ने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री ने निवेशकों और उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे ओडिशा में एमएसएमईज, युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स और अनुसंधान एवं नवाचार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दें. श्री मोदी ने यह भी कहा कि अगले माह पहला वैश्विक ऑडियो विजुअल सम्मेलन भारत में होगा और यह भी एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जो विश्व में भारत की क्रिएटिव शक्ति को नई पहचान देगा. उत्कर्ष ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख वैश्विक निवेश सम्मेलन है जिसका उद्देश्य भारत में एक अग्रणी निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में ओडिशा को स्थापित करना है. क्या कहेंगे आप, ओडिशा एक जो गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर इस तरह की प्रगति होना कितना महत्वपूर्ण है पूरे देश के समग्र विकास के लिए?
देखिए, जैसे आप अगर देखेंगे हमारा टारगेट जो जीडीपी का है, तो जीडीपी का टारगेट अचीव कैसे होगा? अगर मान लीजिए अभी इमीडिएटली अगर चाहते हैं कि $10 trillion की इकोनॉमी बने हमारे अगले 10 साल में, कि $10 trillion की इकोनॉमी कैसे तैयार होगी, इसके लिए स्टेट्स को रेडी करना पड़ेगा. महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब स्टेट ऑलरेडी एक्टिव है, गुजरात ऑलरेडी एक्टिव है. ये इतना अच्छा इंक्लूजन का प्रोग्राम है कि अगर वो स्टेट जो अभी आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पिछड़ रहा है, अगर वो स्टेट एक्टिव जीडीपी पार्टिसिपेशन में आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए वो यात्रा जो है ना, 10 ट्रिलियन की यात्रा आसान हो जाएगी। अगर एक एक ट्रिलियन की जिम्मेवारी टॉप 5-6-7 स्टेट ले ले तो फिर रह कहाँ जाता है दिक्कत। और ये आराम से जिसको हम कहते हैं कि अभी असंभव सा दिखता है वो बहुत आसानी से संभव हो सकता है। और मैं पूरे उड़ीसा एपिसोड को, बल्कि मैं चाहूंगा कि वो जो पुराना बीमारू वर्ड था उसके जितने हैं, मध्य प्रदेश कर ही रहा है बार बार सबमिट, और ये जो बिहार है, उड़ीसा है और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब अगर इस तरह से आ जाए और इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करें, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन
रिसोर्सेस भी हैं, जॉब्स की भी जरूरत है।
अगर इसको देखिएगा, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है, भारत जितना विस्तृत है। ये कहते हैं कि घर के नए मेंबर को नौकरी मिलना तो घर कितना आगे बढ़ जाता है, उसी तरीके से मैं इस पूरे प्रक्रम को देख रहा हूं। और मैं बहुत कह सकते हैं कि पॉजिटिव नोट पे लेता हूं कि ये तो एक प्रॉमिसिंग एक्सरसाइज होने जा रहा है।
Now let's go over to External Affairs Minister S. Jaishankar is live. Let's listen into what the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar emphasized the growing importance of India-Middle East relations during the inaugural Raisina Dialogue in Abu Dhabi. Highlighting a decade-long surge in trade connectivity and cultural ties, he called the partnership crucial in today's shifting global landscape. He praised its West Asia expansion, reflecting India's historical and deepening ties with the Gulf, where annual trade has reached from $160 billion to $180 billion, and over 9 million Indian reside. So now, in fact, we are joined in by our Dubai correspondent Vinod Kumar with the more detailed. Vinod, talking specifically about the economic aspects, what have been the key highlights with regard to Dr. S. Jaishankar's visit to UAE so far?
Hello, Nishit. That was a good question. See, this is the 11th visit of Dr. S. Jaishankar to the United Arab Emirates post. He has taken off the charge at the Ministry of External Affairs. Let me give you a brief background of the bilateral trade between India and the United Arab Emirates. India and UAE share a robust trade partnership, making UAE India's third largest trading partner and second largest export destination. This bilateral trade has grown significantly over past many decades, and currently it is at $85 billion with UAE alone. And with the wider West Asia, it closes around $160 billion. And under the SEPA agreement, which came into force on 2022, we have set a target of ourselves of $100 billion with UAE alone in non-oil trade. So India's key export to UAE is petroleum products, refined petroleum products, telecom instruments, gems and jewelry, while the import from UAE to India is crude petroleum, gold, aircraft, spacecraft parts, other technological equipment. And in investment relations, UAE is India's fourth largest investor in India, with significant investments in various sectors like energy, infrastructure, logistics, real estate. Prominent UAE entities like Abu Dhabi Investment Authority, Mubadala, DP World have made substantial contributions to India's economic landscape. Mm-hmm. It is in this context we have to analyze why Dr. S. Jaishankar has visited this country multiple times. We have recently had a currency swap agreement between rupee and dirham. In UAE, there is a similar thing to our UPA. It is called ARNI, and we are now working to interlink both of them. And UAE has created a card called Jeevan using India's rupee stack. And this interest between UAE and India extends much beyond trade. We have investments in fertilizers, energy, defense, cyber technology, ports, railways. Speaking of ports and railways, India and the West Asia have agreed upon a new project called IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor, mm-hmm. of which the first leg of this envisioned project starts from the UAE.
Yeah, we know.
So once it is implemented, we can see that trade will be multiplied with ease of logistics.
Right.
And Dr. Jaishankar today had made a very poignant statement speaking at UAE, that he highlighted the challenges of a shifting global order, calling it a time of both complexity and opportunity, and true friendships are forged in such moments of complexity and opportunity, citing on the background of the peace that has come back to this West Asia after a long time with the ceasefire in Gaza and Lebanon.
All right, Vinod. Thank you so very much for your inputs. That was our Dubai correspondent, Vinod Kumar, live with details about External Affairs Minister's visit to the place. And in some other stories, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget on the 1st of February, that is Saturday. A new services division of Akashwani will broadcast discussions on the budget expectations today relating to industrial sector and job creation. Tune in to 100.1 Akashwani Gold at 7:10 p.m. to listen to this discussion in Hindi in the program Surkhiyon Mein. And the English discussion will be broadcast in the program Spotlight at 9:15 tonight on 100.1 आकाशवाणी गोल्ड।
और आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.14% की बढ़त में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.11% की वृद्धि रही, लेकिन जापान का निकेई सूचकांक 1.4% से अधिक की गिरावट में रहा। हालांकि चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार आज अवकाश के कारण बंद थे। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख बाजारों में आज बढ़त का रुख था। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.6% से अधिक तेजी पर था। लंदन के फुटसी में 0.5% से ऊपर बढ़त थी और फ्रांस का कैक 0.4% की वृद्धि पर था।
And moving on to the US markets, the US stocks displayed mixed trend yesterday. The tech-heavy Nasdaq composite plunged over 3% and S&P 500 declined over 1.4% after a low-cost Chinese artificial intelligence model triggered a steep sell-off in the US semiconductor companies, casting doubt on dominance of the US companies in this sector. Meanwhile, the Dow Jones Industrial Average added over 0.5%. Investors are now focusing on the Federal Reserve's first meeting in 2025 beginning today. The Fed is expected to keep interest rates unchanged despite U.S. President Donald Trump's calls for immediate rate cuts. The investors await the central bank's forecast for inflation to look for signals on what the next rate cut might occur. And in crude, oil prices rose today. Brent crude was trading over 0.7% up at $77.66 per barrel, and the WTI crude added over 0.6% to trade at around $73.67 per barrel when reports last came in. Bijoji, what do you have to say? Where is the crude headed from here on?
It will be in a range-bound environment. The reason is very clear. The way U.S. is right now looking the crude, again, all the bans which had been there for the drilling has been more or less instructed to move out from those bans. And actually a phrase which was older phrase, but still now it has been rephrased, drill, baby, drill. So drill, baby, drill will be taking this, you know, crude on that front, because we all know that crude is still having a great relevance in any economic happenings. And I am not looking anything out of boundary right now.
So US ke rashtrapati Trump ki ek aur jo baat unhone kahi hai, interest rates ko lekar unhone ahvan kiya hai US Fed se ki aap interest rates kaatiye, aur hamesha inke beech mein ek tussle rehti thi inke pichle term mein. So aapko lagta hai phir se wo ek tug of war rahegi?
Abhi thoda sa jo, kyunki फेड रिजर्व ने जो स्टेप्स पिछले एक साल से उठा रखे थे और बहुत हद तक वो अपने कह सकते हैं कि रेट को ऑर्डर में ले आया था, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर एम्प्लॉयमेंट का रहा, तो मेरे ख्याल से ये अभी उस तरह से फाइट नहीं होगी।
और अब चलते हैं सराफा बाजार की ओर, जहां सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.37% बढ़कर 80,320 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.18% गिरकर 90,690 रुपये प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति वाला सोने का वायदा मूल्य 0.42% बढ़कर 79,915 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.2% बढ़कर 90,407 रुपये प्रति किलो पर था। समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। का। कुमार जी आप आए और विभिन्न विषयों पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद,
थैंक यू सो वेरी मच विजय जी। एंड नाउ बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद गेन्स ऑफ ओवर हाफ अ परसेंट, सेंसेक्स राइजेस ओवर 530 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस अबव 22,950 लेवल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर, कॉल्स अपॉन इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू सपोर्ट MSMEs, startups by youth, research and innovation activities in Odisha, and global crude oil price rise. Brent crude trades at $77.66 per barrel. That's it in this edition of Market Mantra. From all of us here, goodbye.
Namaskar.
Market Mantra.